जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो कल हम सुन रहे थे कि कैसे ये जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आदि का वैराग्य था, किस प्रकार से वो वृंदावन में अलग अलग वृक्षों के नीचे निवास करते थे और उनका जो भोजन है वो सूखी रोटी हुआ करते थे, चने खाते थे, भोग परिहरी जो भौतिक जो एंजॉयमेंट है उससे वो दूर रहते थे, भोगों से। जितना अधिक भोगों में लिप्त होंगे उतना ही अधिक इस भौतिक जगत में हमारा जो निवास है वो बना रहता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, कि यह स्पर्श का जो सुख है, मतलब ये जो सुख उत्पन्न होता है स्पर्श के कारण, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, दुख तो इसमें आने वाला ही है निश्चित रूप से। हाँ, विषयों को भोगना मतलब उससे छुटकारा नहीं है, दुखों से छुटकारा नहीं है, दुख निश्चित रूप से आएगा। हाँ, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते अद्यंतवंत कौन्ते या नते शूरमते बुधा, कि हे कौन्ते हे कुंती के पुत्र अर्जुन आद्य और अंत, ये भौतिक सुख का क्या है, आदि है और अंत है, लेकिन आध्यात्मिक सुख का क्या है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वो वर्धित होता जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, जैसे सागर की तरह, सागर का कोई अंत नहीं है। तो उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक आनंद है, वो शाश्वत है और असीम मात्रा में है, लिमिटेड नहीं है। भौतिक आनंद कैसे है, लिमिटेड है, सीमित है, कोई एक उसकी सीमा है। तो उस प्रकार से जो ये गोस्वामी गण है वो आध्यात्मिक आनंद में मग्न रहते थे। तो बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली। तो रूप गोस्वामी का जो जीवन है वो इस प्रकार से था। नतेषु रमते बुधा, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस सुख में रमन नहीं करता है, नतेषु रमते बुधा। बुधा का मतलब कौन? बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन। तो इस प्रकार से जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि हैं, वो जानबूझकर भौतिक भोगों से विरक्त रहते थे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक भोग वो साथ साथ नहीं चल सकते। मतलब वो वैसे ही होगा कि दो नावों में पांव रख के आप किसी नदी को पार कर रहे हो। मतलब एक भौतिक नहीं, नहीं, मैं भोग भी करना चाहता हूँ और भक्ति भी करना चाहता हूँ। तो मतलब नदी को पार करना है और दो नावों का सहारा आप ले रहे हो, और एक पाव इस नाव में रख रहे हो और दूसरा पाव उस नाव में रख रहे हो, तो आप पार नहीं हो सकते। आपका हरि बोल हो जाएगा। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक जीवन है वो सीरियस बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? सीरियस, गंभीर बिजनेस है। इसलिए गंभीर छात्र की आवश्यकता है। और शिष्य का मतलब क्या है? जो शश धातु से आता है वो शब्द, मतलब शासन। शिष्य का मतलब है जो शासन में रहता है, किसी के अधिक अधीन रहता है, शासन का पालन करता है किसी के। और किस चीज का शासन होता है उसके ऊपर? साधु और शास्त्र का शासन होता है, गुरु और शास्त्र का शासन होता है। तो जो आध्यात्मिक जीवन है वो गंभीर व्यक्तियों के लिए है, जो सही में भगवत उन्मुख होना चाहते हैं। तो भौतिक एंजॉयमेंट तो बहुत सरल है, लेकिन बहुत कष्टदायक भी है, मतलब लगता है हमारे लिए, क्योंकि आध्यात्मिक जो आनंद है वो इनविजिबल है। किसी को दिखता है क्या आध्यात्मिक आनंद? नहीं दिखता हमें, लेकिन भौतिक आनंद विजिबल है, दिख रहा है। लेकिन जैसे भौतिक आनंद को आप ट्राई करोगे तो वो दुख देता है, लेकिन आध्यात्मिक आनंद क्या है कि उसको प्राप्त करना बहुत सरल है, ज्यादा कष्टदायक भी नहीं है, और उसको आप अनुभव कर सकते हो। आध्यात्मिक आनंद को क्या कर सकते हो? अनुभव। जैसे हम कीर्तन होता है, बहुत जोर से कीर्तन हो रहा है तो आता है कि नहीं, आनंद अनुभव होता है। आज से लगता है नहीं, मोर मोर, जैसे मायापुर में गाते थे सब पंचतत्व के इंस्टॉलेशन के समय, या अभी वो फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, 3 डे हरिनाम डे होता है, होली नेम डे गौर पूर्णिमा से पहले, तो सारे बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, इस्कॉन के कीर्तनिया हैं, वो कंटिन्यूस गाते हैं अलग अलग डिवोटीज। तो इतना रोमांचदायक वो वातावरण होता है कि मतलब हर कोई मैड रहता है, कीर्तन में नाच रहा है, गा रहा है, चिल्ला रहा है, और सन्यासीगण गाते हैं। तो इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, और बहुत सरल है। तालियों का मतलब हाथों का यूज करना है और मुंह का यूज करना है। स्पिरिचुअल आनंद के लिए आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन भौतिक आनंद के लिए कितना कष्ट है। एक एक एक, एक डिवोटी गृहस्त जीवन में थे तो कह रहे थे, प्रभु जी 10 साल तक मैं गृहस्थ जीवन में रहा, अभी वो वानप्रस्थ जीवन में आ गए 10 साल के बाद ही, क्योंकि वहां ज्वालामुखी हो रहा था, वॉल्केनो उबल रहा था, बॉइलिंग द लेवल बॉइल हो रहा था पूरा लाइफ। ऐसे लग रहा था उनको कि गैस के बर्नर के ऊपर मुझे रखा है। तो कहते हैं मैंने अनुभव किया कि जो स्त्री है, मतलब ये शब्द हमेशा लोग यूज करते, स्त्री सुख है कि नहीं? एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपके जीवन में तो स्त्री सुख है ही नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा। मतलब स्त्री भी सुख दे सकती है क्या किसी को? बहुत टफ है ये, इल्यूजन है एक्चुअली। मतलब हमारी सिचुएशन क्या है कि जो स्त्री है, जिसका नेचुरल इंक्लिनेशन भोगों के प्रति होता है, इसलिए सारे शास्त्रों में पुरुषों को ही क्यों कहा गया है, उठो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, क्यों? क्योंकि ये बॉडी सुटेबल है एक्चुअली, तपस्या कर सकता है मनु पुरुष का शरीर। श्री का शरीर नहीं, श्री का शरीर क्या करता है, भोग चाहता है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि आप किसी भक्त ने कहा कि मैं मैरिज करना चाहता हूं, तो प्रभुपाद कहते हैं ओके, आप यदि उसको रोज कंगन आदि देके सेटिस्फाई कर सकते हो तो आप तैयार हो जाओ मैरिज के लिए। हाँ, तो मतलब उसका शरीर भोग अधिक मात्रा में चाहता है, और वो नेचुरल है, उस शरीर वो बॉडी वैसे बनाया गया है। स्त्री के लिए सबसे इजी है, उनको सबसे पहले बच्चे चाहिए, है कि नहीं, धन चाहिए और कई आदि चीजें चाहिए, मतलब एक चीज से बहुत चीजें शुरू हो जाती है। मतलब वो हम उसको भोगना चाहते हैं और एक चीज को भोगना चाहते हैं, है ना, एक ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या, स्त्री। लेकिन वो स्त्री हजारों ऑब्जेक्ट को भोगना चाहते हैं, और जिसके लिए हमें गधे जैसा काम करना पड़ता है। आप समझे, मतलब उसको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए भोगने के लिए, उसको बच्चे चाहिए, उसको नाइस घर चाहिए, घर के अंदर कितनी सामान चाहिए, और फिर वस्त्र आदि चाहिए, हर फेस्टिवल आता है कि नहीं आता है, उसको साड़ी चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो मतलब वो उसको कई चीजें भोगने के लिए आप दोगे, तब आपके जीवन में एक चीज मिलती है, क्या है वो, श्री है, जिसको भोग कर सकते। और श्री शब्द का अर्थ है विस्तार, क्या, एक्सपैंड या एक्सपेंशन। आप कोई भी चीज एक्सपेंशन करने लगती है श्री से। आप देखेंगे भागवतम में कहा गया है इसी चीज को कि जैसे स्त्री आती है, उसके साथ फिर आपको धन चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए, फिर घर चाहिए, अपना स्टेटस रखने के लिए, और कई फैसिलिटी चाहिए। इसलिए जो स्त्री है वो एक प्रकार से जो मनुष्य है वो चाहता है कि मैं उसका भोग करूं, और स्त्री क्या सोचती है, मैं पुरुष का भोग करूं। मतलब दोनों के अंदर ये जो पुरुष भाव है, कौन सा भाव है, हाँ, और पुरुष तो एक ही है, कौन है, पुरुषोत्तम कृष्ण है, श्री क्षेत्र में निवास करते हैं वो पुरुषोत्तम। तो ऐसे पुरुषों में उत्तम हो, एक ही पुरुष है, बाकी सब क्या है, प्रकृति है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो सो कॉल्ड पुरुष है। तो मतलब यंजायर का मतलब है जो पुरुष भाव रखता है अपने अंदर, उसको यंजायर कहा गया है। हाँ, पुरुष का भाव क्या है, भोक्ता, भोक्ता राम, कौन सा राम, सही है, भोक्ता तो केवल राम है, एक्चुअली लॉर्ड राम है, लेकिन अपने आप को हमने भोक्ता बना लिया है। और यदि हम सही में भोक्ता होते हैं, क्योंकि जो भोक्ता है उसका विनाश नहीं होता कभी, भोग्य वस्तु का विनाश हो जाता है। जैसे अभी मैं सिंपली वंडरफुल को भोग करो तो वो चीज विनाश हो जाएगी। हम सही में भोक्ता है तो हमारा विनाश नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, तो साथ साथ हमारा विनाश हो रहा है, तो हम वो चीज को नहीं भोग रहे एक्चुअली। इस प्रकार से जो स्त्री है वो भी पुरुष का भोग करना चाहती है, भोक्तापन उसके अंदर है, और जो पुरुष है वो भी भोगना चाहता है, और उसके लिए एक चीज को भोगने के लिए उसको हजारों चीजें उसके आगे डालनी पड़ती हैं। जैसे गाय का दूध निकालने के लिए आपको चारा घास डालो, फिर आप वो पानी भी पिलाओ, उसको धुलाओ भी, फिर आप वो उसका डिफरेंट होता है खाने का जो ना इंग्रेडिएंट्स, उसको मिक्स करके अलग अलग उसको खिलाओ, तो मतलब उसके आगे बहुत चीजें आप डालोगे तब आपको दूध मिलेगा। तो गाय का तो इजी है एक्चुअली, ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको दूध निकालने के लिए, लेकिन एक स्त्री के लिए आप भोग करना चाहते हो, और किस चीज का भोग करना चाहते हैं, शरीर का, है कि नहीं, स्पर्श सुख से कहा गया है, यन मैथुनादि ग्रह मेधिम सुखम ही तुच्छम, प्रहलाद महाराज कहते, कैसा सुख है ये, तुच्छम, कंडोरिव करयो बहु दुख भाजाम, बहु दुख दुखम, वो कहते हैं कि ये तो वैसे ही है, खुजली करने से जो आनंद मिलता है, मतलब यहाँ बहुत पीड़ा हो रही है और खुजलाओ थोड़ा तो आनंद मिलता है एक प्रकार से। और दो चीजें होती है, एक तो आनंद मिलता है, और जो दूसरा ये है थोड़ा सा दिक्कत जो कम होने लगता है। जितना अधिक खुजलाओगे, जितना खुजलाओगे उतना आनंद है, लेकिन कैसे मिक्स हुआ है, किसमें, ब्लड भी निकल रहा है साथ साथ, जैसे वो ऊंट है, ऊंट क्या खाता है, कंटीली जो झाड़ियां खाता है, और उसको बहुत कैमल जो तो वो जैसे खाता है तो उसके जीवा से ब्लड निकलने लगता है और वो सोचता है ये कांटे कितने टेस्टी हैं। और हमारे भी सिचुएशन वैसी है, हम भौतिक चीज को भोग करते हैं, वास्तव में हम अपना खून को क्या कर रहे हैं, चाट रहे हैं, पी रहे हैं, और वो हमें टेस्ट दे रहा है। इसलिए फिफ्थ कैंटो में प्रभुपाद जब इस बात को लिखते हैं तो कहते हैं कि दिन को डाकिनी रात को बागिनी, पलक पलक लहू चूसे। जब स्त्री के बारे में कहते हैं प्रभुपाद तो कहते हैं कि दिन को डाकिनी रात को बागिनी, पलक पलक लहू चूसे। तो स्त्री की तुलना वो ऐसे करते हैं कि उसका यदि आप भोग करना चाहते हो तो वास्तव में वो आपका खून चूस रही है। दिन को कैसे खून चूस रही है, सकिंग द ब्लड, वो पी रही है आपका ब्लड। पूरे दिन आप ऑफिस में जाओ, टेंशन लो, बॉस का गालियां खाओ, उसको प्रणाम करो, और जो भी मंथली धन आता है आते ही उसके जेब में डाल दो, आते है कि नहीं, कहा देता है, वो नेचुरल फ्लो है। एक्चुअली वो बेचारा काम करेगा पूरा महीना और आके उसके पास देगा, और वो फ्री है दिन में, तो दिन में क्या करेगी, मॉल्स खुले हुए हैं, मॉल्स में जाएगी, धन वेस्टेज करेगी। तो इसको कहा है दिन को डाकिनी, डाकिनी जो होती है वो खून पीती है ना बच्चों का, जैसे पूतना आदि का वर्णन आता है, तो वैसे ही अर्निंग मनी मीन्स हम अपना ब्लड से, वो है ना, ब्लड देके ही तो हम धन अर्जन कर रहे हैं, अपना एनर्जी लगा रहे पूरे दिन रात, दिन में कष्ट उठाते हैं, धूप में प्रसाद नहीं मिलता फिर भी हम ना काम करते हैं ऑफिस आदि स्थानों में, मार्केटिंग वालों का तो पूछो नहीं, बाहर घूमना पड़ता है, और दिल्ली जैसी सिटी में पता नहीं कितना टफ है, जो जिनका घूमने का बिजनेस है, मतलब बाहर घूमते रहो, मतलब MBA वगैरह करवाते और भगाते बाहर, है ना, जाओ ये करो, मार्केटिंग करो, बहुत टफ लाइफ है। तो वो जो है वास्तव में अपना खून दे रहे हैं, उससे मंथली अर्जन कर रहे धन, और वो आके हम क्या करते हैं, स्त्री के हाथ में देते हैं, और वो पूरे दिन मार्केटिंग में लगी रहती है, मार्केटिंग नहीं, वो तो परचेजिंग में लगी रहती है, तो वो धन वास्तव में वो ये कर रही है। तो इस प्रकार से वो दिन में हमारा खून पान कर रही है, रात को बागिनी पलक पलक लहू चूसे। रात को कैसे, सेंस एंजॉयमेंट, वीर्य के द्वारा। तो प्रभुपाद लिखते हैं ना 40 जो ब्लड ड्रॉप है उससे एक ड्रॉप शायद ये बनता है, वीर्य बनता है। इस प्रकार से हम बलिदान कर रहे हैं अपना एक चीज को भोग करने के लिए, और वो क्या है, हजारों लाइफ टाइम हमने वही किया है एक्चुअली, इस शरीर में नहीं, नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे। हम नाना योनियों में हजारों हजारों शरीरों में घूम रहे हैं, और ये करदय, करदय का मतलब है जो खाने योग्य चीज नहीं है उसको खा रहे हैं, सुअर की चीज हम खा रहे हैं। मनुष्य लाइफ के लिए क्या है, जैसे ये गोस्वामी से उनका क्या लाइफ है कि वो हर समय खा रहे हैं, क्या चीज खा रहे, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास। तो ये एक्चुअली हमारे लिए भोजन है, वास्तविक भोजन, ये हमारे लिए सर्वोत्तम आनंद देने वाली चीज है, लेकिन हम पूरा कन्विंस हो गए हैं, माया ने हमें पूरा प्रिच कर दिया है, हम बार बार उसी ओर जाते हैं। जैसे कोई कुत्ता है उसके जीवा में थोड़ा वो लगता है तो बार बार आता है, कितना मारो थोड़ा भागेगा फिर आएगा उधर ना, तो उसी प्रकार से माया के थप्पड़ हमने हजारों योनियों में खाए हैं, हजारों शरीरों में, और फिर हमें बार बार हम जाते हैं और फिर माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए ये जो सेंस एंजॉयमेंट है, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो क्या है, शुरुआत में हमें अमृत के समान है, रजोगुण के कैटेगरी में आता है। रजोगुणी का सुख कैसे है, शुरुआत में अमृतोपम, अमृत के समान, सही में अमृत के समान लगता है। हमें अमृत का टेस्ट पता नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी अमृत के समान हमें महसूस होता है। और बाद में कैसा है, विष के समान, करेला भी नहीं करेला तो हम खाते हैं, विष, विष पान। इसलिए अपना दुख व्यक्त करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, हरि हरि विफले जन्म गोवायनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खायनु, कि मैं सबको जान लिया है, सुन रहा हो, पढ़ रहा हो, जान भी रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा हो, विष का पान कर रहा हूं। तो इस प्रकार से ये जो रूप सनातन है ये पूरी तरह से मग्न थे, वो स्वयं इस भोग की चीजों से वो दूर रहते थे, क्योंकि भुक्ति जो क्या करती है, इस भौतिक जगत में हमें बांध के रखती है। और इसी कारण से जब भोग की भावना हमारे हृदय में, मन में बहुत अधिक होती है, तो आध्यात्मिक चीजों के प्रति स्वाद नहीं महसूस होता। मतलब कि हमने उस चीज का जो, उस चीज को हमारे दिमाग और मन बुद्धि में बनाए रखा है, उस टेस्ट को, कौन सी टेस्ट को, भौतिक आनंद की जो टेस्ट है। इसलिए आध्यात्मिक आनंद में हमें आध्यात्मिक स्वाद हम नहीं ले पाते। वो एंड का स्टोरी सुना होगा आपने, वो एंड का मैंने बीच में कहा था कि दो फ्रेंड्स थे, एंड दो जो क्या कहते चेटी, हाँ तो कहा करते थे वो, एक कहाँ रहते थे, नमक के पहाड़ में, दूसरे कहाँ रहते थे, शुगर के पहाड़ में। तो बहुत मित्रता थी उनकी, घनिष्ठ। तो जैसे ही इनवाइट किया शुगर की पहाड़ वाली ने कि आप आओ हमारे बेस में आ जाओ, वहां अलग अलग जगह में रहते थे। तो इन्होंने सोचा ये आई शुगर वाली से मिलती है, चर्चा करती है, और फिर वो उनको देती है, ऑफर करती है थोड़ा चीनी खाओ। तो जैसे ही खाती है तो लेकिन उसको स्वाद नहीं महसूस होता। क्यों नहीं महसूस होता, क्योंकि वो वहां से सोच के आए थे, अरे वहां कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, पहले से उसने क्या किया था, नमक का ढेला अपने मुंह में रख के आए थे, तो उसको स्वाद नहीं आ रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसने त्याग, उसको चाहिए कि उस नमक को उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, उसको त्याग करना पड़ेगा, तभी फिर शुगर का जो टेस्ट है वो अनुभव कर सकती है। तो उतनी मात्र जितने, क्योंकि हम अभी भी कन्विंस नहीं है, अभी भी फियरफुल स्टेज में है, अरे सही में मिलेगा कि नहीं, भक्ति में कुछ है कि नहीं, बाद में अभी भी आनंद में है कि नहीं, तो इसलिए हमने बाकी कई चीजें बांध के रखी है, कई आसक्तियां हैं, कई प्रकार के टेस्ट है, भौतिक जो स्वाद है इंद्रिय तृप्ति के वो बनाए रखे है। तो इसलिए उनको त्याग करेंगे तो फिर उसका स्वाद हम चखेंगे। आध्यात्मिकता का नाम कृष्ण कथा, कीर्तन आदि, श्रवण कीर्तन आदि, इन चीजों में हमें वास्तव में रस महसूस होगा। क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, हमने उस रस को पकड़ के रखा है, इंद्रिय तृप्ति से मिलने वाला जो रस है उसको पैक करके रखा है, साथ में रखा है हमने। इसलिए ये जो रूप सनातन है वो कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास, इसमें आनंद लेते थे। और इसमें हमें फोर्सफुली लगना चाहिए, फोर्सफुली, एक ना एक दिन आएगा, धीरे 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 क्या होगा, वो आनंद हमें महसूस होगा आध्यात्मिकता में। ऐसे नहीं कि अचानक हो जाएगा, कोई कहेंगे कि क्या अभी बहुत सालों से वैसे बना हूं मैं अभी, नहीं, इसको कोई सोच सकता है कि अभी चाहिए, क्विक चाहिए, क्योंकि यह अभी ये मॉडर्न युग क्या है, इंस्टेंट है, चुटकी बजाते हुए चाहिए हमें, है ना, इंस्टेंट टी है, फिर अभी तो क्या आ गए, फूड, क्या कहते हैं उसको, फास्ट फूड, फास्ट नरक जाने वाले फूड है, फास्ट फूड, और फिर इंस्टेंट टी, और मेट्रो भी आ गया, और क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें जो फास्ट चाहिए हमें। हाँ, फिर एक दिन आएगा फास्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ, ब्रेक नहीं हो सकता आपका फास्ट। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन है, तो इसलिए अब ये नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में ये गुण हमें अंगीकार करना चाहिए, और वो कौन सा है, धैर्य। हाँ, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। भक्ति के लिए क्या चाहिए, पहले उत्साह, चाहे उत्साह है या नहीं है, भक्त लोग मोहित प्रभु बजा रहे मृदंग, चलो नाचेंगे जोर जोर से, चाहे उत्साह शरीर में है या नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर को लगाओ और उससे क्या होगा, उत्साह आएगा, सही में अरे आनंद आ रहा है। कई बार होते कीर्तन में हमें कोने में खड़े रहते, उत्साह नहीं आता, लेकिन जाओ उत्साह नहीं है, बैठो, सुनने के लिए उत्साह नहीं, चलो बैठते हैं, फिर धीरे धीरे आएगा उत्साह। प्रसाद के लिए उत्साह नहीं, फिर भी प्लेट लेके बैठ जाओ, ऐसे होता है क्या? वो चीज में तो वो स्वाभाविक उत्साह है, उसमें तो अपने आप उत्साह आता है। अच्छा है, किसी एक कृष्ण भावना की चीज में हम ये है इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। हाँ, तो ऐसा उत्साह, और उत्साह के साथ क्या चाहिए, निश्चय, निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, ध्रुव, दृढ़ता के साथ उस कार्य में लगे, और लगे तो कैसे होना चाहिए, फिर धैर्य। हाँ, धैर्य। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं कि क्विक रिजल्ट, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैरिज होता है तो जो नवविवाहिता स्त्री है वो कहेगी कि मुझे अभी आज मैरिज हो गया है, कल बच्चे चाहिए, तो मिलेगा नहीं, उसको 9 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, 10 महीने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य है कि भक्ति में उत्साह से लगे, निश्चय के साथ, और धैर्य रखे, गुरु और कृष्ण के आदेशों का पालन करते हुए हम लगे रहे धैर्य, तो फिर नेचुरली एक दिन आएगा क्या होगा, अनुकूल होगा जो कृष्ण भक्ति है हमारे लिए। तो ऐसे जो रूप गोस्वामी हैं उनका वर्णन आता है कि वो अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारित दंड शयने नाम संकीर्तने से नहे को नदिने। तो ऐसे रूप गोस्वामी आदि क्या करते थे कि 24 घंटे एक प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे। हाँ, अष्ट प्रहर, एक प्रहर कितने घंटे का होता है, 4 घंटे का। हाँ, तीन, हाँ 3 घंटे का। तो ऐसे प्रहर में अष्ट प्रहर, 8 + 24, अष्ट प्रहर कीर्तन भी कहते हैं ना, बंगाल उड़ीसा में होता है अष्ट प्रहरी कीर्तन। हाँ, लॉर्ड चैतन्य भी कीर्तन करते थे रात को। तो ऐसे अष्ट प्रहर एक प्रकार से 24 घंटे कृष्ण भजन आदि में लगते थे, और चारी दंड शयन, वो एक, और एक दंड 24 मिनट्स का होता है, तो 4 दंड कितने हो गए, 1.5 आवर लगभग है ना। तो केवल ये 1.5 घंटा के लिए सोते थे, बाकी समय क्या करते थे, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास, ऐसे ये जो गोस्वामी हैं, और नाम संकीर्तने से नहे को न दिने, और कभी कभी तो इतना अधिक नाम संकीर्तन में लगे रहते थे कि कभी कभी वो 1.5 घंटा भी नहीं सोते थे, 24 घंटा हाँ वो बिल्कुल पूरी तरह से लगे रहते थे। तो ऐसे इनका जीवन था, रूप सनातन आदि का। हमारे लिए तो मतलब मंगल आरती तपस्या है, आप सब तो उठ जाते हैं, मैं तो अपने आप को फोर्स करता हूँ उठने के लिए। हाँ, क्योंकि तो हमारे लिए तो स्वप्न के समान है निद्रा पर विजय प्राप्त करना। किसने विजय प्राप्त की थी, अर्जुन, गुड़ाकेश, गुड़ा, हम तो गुड़ खाते हैं गुड़ खाने में एक्सपर्ट है, वो तो गुड़ा केश है, गुड़ा का मतलब है स्लिप, हाँ उसको जो कंट्रोल करते, ईश गुड़ा केश कंट्रोल करने वाले वो थे अर्जुन। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये स्वप्नवत है कि शयने कि भोजने कि बा रात्रि दिने हर निशा बोलो कृष्ण। तो कहते हैं कि किस शयने कि भोजने, क्या सोते समय क्या, भोजन करते समय क्या, आहार निश क्या करो, बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो। तो निद्रा आहार विहार कादि विजितो, इनका जीवन कैसे है, षड्गो समय अष्टकम में कहते हैं निद्रा आहार, निद्रा के ऊपर आहार, इन सब के ऊपर इन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। तो आध्यात्मिकता में उन्नति करता है तो स्वाभाविक हो जाता है उसके शरीर की जो मांगे है डिमांड्स वो कम हो जाती है, स्वाभाविक। शरीर बहुत डिमांड कर, जितने डिमांड्स आप इसकी फुलफिल करना चाहो, हाँ मतलब ये शरीर, ये जो गाड़ी है, जैसे आप डिस्कवर योर सेल्फ सेमिनार में कहते ना, बॉडी का वैल्यू कितना है, 110 रुपए, ये केमिकल से वो केमिकल से ये है, मतलब ये जो गाड़ी है इतनी सस्ती है, मर्सिडीज से भी बहुत सस्ती, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत है कि नहीं, इसका मेंटेनेंस कितना है, बाकी कोई भी आप कई लाख करोड़ों की गाड़ी खरीदो, मेंटेनेंस इतना ज्यादा नहीं होता। हम हमेशा सोचते हैं गाड़ी परचेज करते समय मेंटेनेंस कितना है, वो कहते हैं नहीं ज्यादा नहीं है, मारुति का कभी कभी मेंटेनेंस होता है, लेकिन ये जो गाड़ी खरीदा है वो बहुत सस्ता है, 110 रुपए का उसका वैल्यू आजकल के साइंटिस्ट कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण गाड़ी है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कितना है, इसको पहनने के लिए इतने ड्रेस चाहिए, कॉस्मेटिक्स चाहिए, बालों के लिए अलग चीज चाहिए, फिर देखो हर पार्ट के लिए डिफरेंट उसका हैवी मेंटेनेंस है, एक एक पार्ट के लिए एक एक जो डॉक्टर है पूरा जीवन लगाता है जीवन बर्बाद कर देता है, फिर भी उसको नॉलेज नहीं होता कितना कठिन है। बाकी भौतिक जो गाड़ी है ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता कि जो व्हील्स है उसका कोई व्हील एक्सपर्ट ऐसा है क्या, कोई नहीं, या स्टेयरिंग एक्सपर्ट है का नहीं, यहाँ तो ऐसा व्हीकल है कि इतना डिफिकल्ट है, जिस व्यक्ति ने बनाया है वो कितने बुद्धिमान होंगे, कौन है वो, कृष्ण। तो इतना टफ है कि पूरा जीवन लगाता है डॉक्टर बेचारा कान का ही कान का सर्च करने में, कान के अंदर की चीजें, इतना सा तो पार्ट है या फिर दांत दांतों में पूरा जीवन, डेंटल क्या कहेंगे, डेंटल स्पेशलिस्ट या फिर आई स्पेशलिस्ट, थ्रोट स्पेशलिस्ट, नोज, ईएनटी, फिर क्या है, स्किन, मतलब आप देखो हर चीज के लिए वहां पूरा जीवन जाता है, फिर भी उनको कंक्लूजन एग्जैक्ट ये नहीं पता है। तो ऐसा ये गाड़ी है जिसका परचेजिंग तो बहुत सस्ता है वैल्यू, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत, ठंड लगती है तो उसको फिर इनर चाहिए, उसके ऊपर स्वेटर चाहिए, फिर उसके ऊपर जैकेट चाहिए, टोपी चाहिए, कंबल चाहिए, फिर अलग अलग प्रकार के कंबल उस गाड़ी को रखने के लिए, बाकी गाड़ियां तो कहां भी पार्क करो आप, लेकिन इसका पार्किंग के लिए आपको
घर चाहिए
बड़ा कोठी चाहिए, और कितना ये पार्किंग है इसका, डिफिकल्ट है। फिर इसके लिए इस गाड़ी को हवा ठंड लगती है तो इसको हीटर चाहिए, फिर गर्मी लगती है तो इसको एसी चाहिए, मतलब आप सोच नहीं सकते ये जो बॉडी है इसका मेंटेनेंस कितना है, पूरा जीवन, और इसी को मेंटेन करने में हम बिता रहे पूरा लाइफ टाइम, उसी की चिंता में है। तो लेकिन ये नहीं जान रहे कि अरे ये गाड़ी मुझे दिया है, इस गाड़ी कहाँ जाने के लिए दिया है, सही ड्राइव करूं मैं, कैसे ड्राइव करूं, सीधा लक्ष्य पता होना चाहिए ड्राइवर को, इस गाड़ी को कहाँ ले जाना है, सही पार्किंग स्थान कहाँ है इसका, आध्यात्मिक जगत, ये गाड़ी ले जा सकता है हमें आध्यात्मिक जगत, वह पार्किंग प्लेस है, बाकी जगह आपको टैक्स देने पड़ेंगे, पार्किंग पेमेंट करना होता है ना, तो ये जगत में जहां भी पार्क करो उसका पैसा देना पड़ता है आपको इस गाड़ी के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड आखिरी उसका डेस्टिनेशन है, वहां पार्किंग फ्री है, तो ऐसी गाड़ी वहां हमें ले जा सकती है। और सही गंतव्य की ओर जाना है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले अपना जो गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन है, वो अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। और उसको कैसे होना चाहिए जानने के बाद, एके हा कुरु नंदन। अर्जुन, द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या दिख रहा है आपको यहाँ, क्या दिख रहा है आपको? मृदंग। अर्जुन को क्या दिख रहा था? पंछी नहीं दिख रहा था। हाँ, आपके अंदर भी जो ब्लैक मतलब आग दिख रही थी पूरा, ऐसा। इसको कहते हैं एके हा कुरु नंदन। भीम को बुलाए। भीम आए। भीम को पूछा, भीम बताओ आपको क्या दिख रहा है? मुझे जो वो बड़ा ट्री भी दिख रहा है और उसके पीछे और भी कई चीज दिख रही है। तो हमारी स्थिति वैसे ही है। हमें एक है नहीं, इसलिए हमें क्या करने पड़ेंगे, फ्लैप, आंखों में फ्लैप लगाने पड़ेंगे। फ्लैप हॉर्स को लगाते हैं ना, क्यों 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 लगाते फ्लैप? क्योंकि उस कोई घोड़ा है तो घोड़ी को देख के वो भागे ना इधर उधर। हाँ, क्योंकि उसको डेस्टिनेशन ऐसे होना चाहिए। हाँ, इसलिए साधु, गुरु और शास्त्र हमारे लिए दो फ्लैप है। उनके इंस्ट्रक्शन, उनका मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस, ये हमारे लिए स्ट्रांग फ्लैप है जो काम करते हैं। फिर हम इधर उधर नहीं दौड़ सकते। इधर निकलेंगे कुछ माया दिखाई देगी तो गुरु थप्पड़ लगेंगे, हरि बोल क्या हो रहा है। फिर शास्त्र सुनते रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो माया की ओर जैसे दृष्टिपात होगा तुरंत ही हम कॉन्शियस हो जाएंगे, तुरंत मुख से कुछ भगवत वाणी निकलेगी। इस प्रकार से ये दो जो फ्लैप है हमारे जीवन में, गुरु और शास्त्र, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो हमें सही चीज में आगे, हम सही जगह सही चीज को हम देख पाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि ये जो गाड़ी है उसका गंतव्य स्थान है आध्यात्मिक जगत। क्योंकि इसको, इसका मेंटेनेंस बहुत भारी है। अभी तो चीजें बढ़ रही है, मोबाइल भी आ गए हैं, मतलब जो चीजें इतना नीडेड नहीं, बहुत चीजें आ गई है कि नहीं। इस प्रकार से ये जो शरीर है जिसकी जो बेसिक नीड्स हैं, आहार है, निद्रा है, उन सबको सही मात्रा में देते हुए जो व्यक्ति को भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि नहीं नहीं अभी मैं बस अभी मुझे वो हो गया, अभी मैंने सुना है रूप गोस्वामी के बारे में और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, अभी कल से मैं प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ। हाँ, सारे भक्तों को आप तंग करना शुरू करेंगे, सो रहे और आप चिल्ला रहे हो वैष्णव अपराध। तो जितना आवश्यक है शरीर को, युक्त आहार विहारश, युक्त युक्त स्वप्नावबोधश योग बहुत ही दुख कि जितना मतलब कम भी नहीं और एक्सट्रीम भी नहीं, नींद और भोजन कम भी नहीं और अति भोजी भी नहीं, अति अधिक भी नहीं। तो ये तो इनमें बड़ा वंडरफुल डिस्कशन हो सकता है, स्लीप एंड ईटिंग, ये पूरा सेमिनार हो सकता है। स्लीपिंग, स्लीपिंग के भी कई वैरायटीज है। डिवोटीज अमेजिंग है। और ईटिंग का तो आप ड्रामास कर सकते हैं। लाउड कॉल है एक्चुअली। जितना हम जप में लाउड कॉल नहीं करते कृष्ण को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उससे अधिक लाउड जब हम एक लाइन में बैठते प्रसाद के लिए, प्रसाद सर्व करते करते पकौड़ा या स्वीट राइस मुझे न देख के कोई भक्त चला जाए तो कितना लाउड चिल्लाता हूँ, हरे बोल। इसको क्या है, लाउड कॉल। हाँ, तो ये हाँ ठीक है, कृष्ण नहीं चाहते आज, नो स्वीट राइस, ओके ऐसे खाए। तो इस प्रकार से लाउड कॉल स्वाभाविक है उस चीज के, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है जैसे मैंने कहा कि वो प्रसाद के लिए आ सकती, प्रसादम में अटैचमेंट। हाँ, भारत में ज्यादा ज्यादा भक्त किस चीज से बनते हैं? प्रसादम डिवोटीज। हाँ, विदेशों में लोग प्रसाद से ही बनते हैं, बुक्स के द्वारा भी बनते हैं। हाँ, तो ऐसे जो गोस्वामी गण है, अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारी दंड शयने नाम संकीर्तने से नहे को न दिने, तो इस प्रकार से हमेशा वो लगे रहते थे इस चीज में, और कभी कभी तो नींद भी उनको मिलता नहीं था। तो ये हमें थोड़ा सा अनुभव होता है जब जन्माष्टमी आता है, जन्माष्टमी उसके बाद प्रभुपाद का जैसे अपीयरेंस वो खत्म होता है कि नहीं तो महाराज का व्यास पूजा, तो ये थोड़ा सा आप झलक ले सकते हैं, ये चीज का अनुभव कर सकते हैं। कबु भक्ति रस शास्त्र कराये लिखान चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, और क्या करते थे? कबु भक्ति रस शास्त्र कराये लिखान, कभी भक्ति रस के जो ग्रंथ हैं उनको लिखते थे, और चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। अभी लॉर्ड चैतन्य से वो दूर थे, कहाँ रहते थे?
वृंदावन।
तो ऐसे ये जो गोस्वामी है रोज चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार। वो कहते हैं अरे बाबा आपको कुछ सोचना है तो आप एक चीज के बारे में सोचो। किस चीज के बारे में? चैतन्य चंद्रेर दया। ठीक है, चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार। ठीक ठीक, इधर ध्यान मत दो, मक्खी तो बैठी रहेगी,
मच्छर है ना।
ठीक है, चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, किसकी दया का विचार करो, क्या दया है, कोई उदाहरण? उनकी दया का उदाहरण बताइए कुछ। जगाए मदाए, कई हजारों हजारों जो लोगों को चैतन्य महाप्रभु की दया प्राप्त हुई, प्राणी कुत्ते बिल्ली जंगल के नाना प्रकार के जो प्राणी हैं मायावादी बहुत सारे। तो इस प्रकार से चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, ऐसे अद्भुत चैतन्य महाप्रभु की दया है। तो ऐसे जो गोस्वामी है चैतन्य कथा सुने रोज, किसके बारे में सुनते थे? चैतन्य कथा, गौर कथा, और महाप्रभु का कथा वास्तव में बहुत स्वीट है। चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य चरित है वो कैसे है? बहुत अधिक स्वीट है, इसलिए तो इस ग्रंथ को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? चैतन्य चरित अमृत, विशेष है, अमृत से भी बहुत अधिक स्वीट है। तो ऐसे गोस्वामी गण सुनते थे अलग अलग भक्तों के द्वारा, रघुनाथ दास गोस्वामी जब आए उनसे सुनते थे रूप सनातन रोज। चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, और इतना स्वीट से भरा हुआ है गौर कथा। अब जो नवदीप परिक्रमा करते हैं तो गोद्रम द्वीप के आगे वो एक स्थान आता है जहाँ जो हंस वाहन स्थान है, जहाँ जब पता चला कि सूत गोस्वामी नवदीप में गौर भागवत कथा कर रहे हैं। कौन सा भागवत? हाँ, चैतन्य भागवत है ना, एक तो चैतन्य चरितामृत, दूसरा क्या है? चैतन्य भागवत। सूत गोस्वामी गौर भागवत का कथा कर रहे हैं, तो फिर सब जगह ये न्यूज फैला बहुत तीव्रता से, और सब लोग आ रहे थे। तो उस समय लॉर्ड शिवा जो बेस्ट जिनको बहुत अधिक रुचि है कृष्ण कथा में, वो कौन है? शिव जी हैं। वो अपने पार्वती फोर कुमारा आदि के साथ वो मस्त रहते भागवत में, या तो सुनाते या सुनते हैं भागवत। उन्होंने अपनी पत्नी को सुनाया, फिर सनत कुमार आदि को भी। तो ऐसे जो शिव जी हैं उनको पता चला कि नवदीप में गौर भागवत सुनाया जा रहा है, इतना अपॉर्चुनिटी कैसे मैं छोड़ू। तो वो तुरंत तो उनका अपना नंदी बैल को लिया, बैल को लिया, उनका वाहन क्या है,
नंदी बैल।
अब देखो वो फैमिली में कितने चित्र विचित्र प्राणी है सारे। एक परिवार के जो व्हीकल है एक के साथ पार्क करो उसको तो शत्रु है आपस में सारे, है कि नहीं, मोर हो गया, चूहा हो गया, और क्या है,
सांप भी है
और सिम्मा है और बैल है। तो लेकिन वो भक्तों के संरक्षण में, वो भी डिवोटीज है।
सिम्मा क्या होता
है, सिंह, लायन,
सिंह,
शेर, शेर अलग और लायन अलग ना। तो जब शिवजी ने देखा वो बैल उनका दौड़ नहीं रहा है, वो कथा शुरू हो गया। ऐसे नहीं कि भागवतम क्लास है, चलो प्रेजेंट ही लगानी, आराम से पहुंचता हूँ, 8:30 को पहुंचता हूँ। हम ऐसा करते थे, ठीक है शुरू होने दिया। शुरुआत में तो वही राधा माधव ही तो गाते रोज ही तो गाते ओम अज्ञानति मेरांदर्श भी रोज ही तो है। मतलब तो ये ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि रोज जो चीज करते हैं वो चीज को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बहुत इम्पोर्टेंट लूज हो जाता है और हल्की हो जाती है। तो इनको उन्होंने सोचा नहीं, ऑन टाइम पहुंचना है मुझे क्लास, वक्ता आने से पहले क्या होना चाहिए, श्रोता पहुंचने चाहिए। ये सही एटीट्यूड है हियरिंग का, शास्त्र कहते हैं। उसमें मैं किसी जगह पढ़ रहा था किसी पुराण में, जहाँ वो दिया है अलग अलग जो श्रोता है उनकी वो तुलना की है अलग अलग पंछियों से, प्राणियों से, और जो वक्ता है उनके भी। तो अलग अलग प्रकार के वक्ता भी है, अलग अलग प्रकार के श्रोता भी है। तो क्या कहा गया है कि वक्ता से पहले क्या होना चाहिए, श्रोता। जैसे शुकदेव गोस्वामी आने से पहले ही सारे परीक्षित आदि सारे ऋषि मुनि वेट कर रहे थे कोई वक्ता का। तो जैसे शुकदेव गोस्वामी आते तुरंत श्रवण करने लगते। भागवतम के जो 88,000 ऋषि थे, शौनक आदि ऋषि, वो पहले ही से बैठे थे, सुत गोस्वामी आके उनको कृष्ण कथा प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने सोचा अभी कथा पहले मुझे पहुंचना है, तो देखा लेट हो रहा हो, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उनका बैल तो चल नहीं रहा था, इतना हेवी प्रसाद पाके वो भागने में उसको दिक्कत था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा का वाहन लिया, ब्रह्मा का जो कैरियर हंस को लिया, और हंस में बैठ के क्या आए, वो आए दौड़ते हुए, सबसे पहले उनका लैंड किया वहां उनके हंस ने कथा के समय, और दौड़ते हुए गए शिव जी सबसे आगे जाके बैठे, और क्या सुन रहे थे, गौर कथा, चैतन्य कथा। तो ऐसे गोस्वामीगण भी चैतन्य कथा सुने करे, चैतन्य चिंतन। और कृष्णदास कविराज ने जो भी ये ग्रंथ को कंपाइल किया है, ये डेली 3 घंटा लगभग इनसे सुनते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी से। राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 3 घंटा चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनाया करते थे। और ऐसे कहा जाता है कि ये सबसे आगे बैठते थे अपना नोटबुक लेके, और उसमें लिखा करते थे जो रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं, फिर इतना वंडरफुल। इसलिए तो सारे गोस्वामी जब अप्रकट हुए, रूप सनातन जीव गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी थे, अप्रकट होने वाले थे। तो जो गोविंद देव के जो मेन हेड प्रिस्ट थे हरिदास पंडित, ये सब भक्त लोग क्या वृंदावन में क्या करते थे, चैतन्य भागवत को सुनते थे, क्योंकि एक ही ग्रंथ था चैतन्य भागवत, या कुछ महाप्रभु की, चैतन्य भागवत भी नहीं, महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनको सुना करते थे, जो नवदीप आदि की। लेकिन उनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु की पूरी की लीलाओं का श्रवण करना है, तो कौन, तो इन्होंने कृष्णदास कविराज को कहा आप कंपाइल करो, क्योंकि आपने क्या किया है, सुना है, नोट्स बनाए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से। तो उन सबका कृपा लेके, मदन मोहन का कृपा लेके उन्होंने कंपाइल किया। हाँ, तो जब प्रभुपाद लीलामृत के इंट्रोडक्शन में भी सत्स्वरूप महाराज ऐसा ही लिखते हैं कि जब प्रभुपाद के ऊपर ऑथोराइज बायोग्राफी लिखने का समय आया तो सारे जेबीसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया। ये उसी प्रकार से जैसे कृष्णदास कविराज को हरिदास पंडित और वृंदावन के भक्तों ने कहा। तो इस प्रकार से ये जो गौर कथा है जो बहुत अधिक शक्तिशाली है, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब इंट्रोडक्शन लिखा बंगाली में पोयम के फॉर्म में, तो उन्होंने कहा सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। क्या होगा चैतन्य कथा सुनने से? भक्ति लभ्य है, इतना सरल है, भक्ति मिलेगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन वो भक्ति क्या हो जाएगा, इनविजिबल है वो, अपना धीरे धीरे हमारे हृदय में अंकुरित होने लगेगा। तो इसलिए श्रवण का महात्म्य है, उसमें भी लॉर्ड चैतन्य के बारे में सुनना तो बड़ा वो है, क्या है, क्या कह सकते हैं, हाँ बहुत लाभदायक है। और तो अभी तो हमें नेक्टर नहीं महसूस हो रहा है क्योंकि हम बहुत लूज हैं, तो हम बस नेक्टर नेक्टर शब्द उच्चारण कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये हो जाएगा संभव, कैसे, रेगुलर एक ही दवाई है, बार बार उसको लो। प्रभुपाद ने कहा जॉन्डिस हुआ है तो शुगर ही एक में दवाई है, उस शुगर को खाते रहो, एक दिन आएगा स्वीटनेस महसूस होगा। तो वैसे ही है, अभी आनंद नहीं आ रहा है लेकिन फोर्सफुल्ली हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं, तो एक दिन आएगा जब सही में ये चैतन्य कथा हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट महसूस होने लगेगी। चैतन्य चरितामृत।